वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण
बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, पर बुद्धिमत्ता का अंत नहीं है, इसका और ऊंचा स्तर है। ये पहला स्तर है भय का स्तर कि भगवान सजा देंगे इसलिए उनके आदेश को पालन करना चाहिए। दूसरा स्तर जो है वह है इच्छा का स्तर, मतलब कि मुझे कुछ चाहिए इसीलिए वो मांगने के लिए भगवान के पास जाता, भगवान मुझे वो दे दे। तो अगर इस इच्छा से हम जाते हैं भगवान से धंधा करने के लिए तो भगवान को सौदा मंजूर है, उसी तरह भगवान किसी के पास आ रहे हैं ये अच्छी बात है और भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी क्या होता है भगवान से प्रेम का संबंध नहीं, वो एक धंधे का संबंध है, बिजनेसमैन का संबंध है, वैसे संबंध है। और इस तरह पे अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो लोग कई बार नास्तिक बन जाते हैं, मैंने इतनी पूजा पाठ की और कुछ भी बल नहीं हुआ। और वास्तव में कैसे है, अगर एक विद्यालय है उसमें एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है और सब आगे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे पहला क्रमांक मिलना चाहिए, तो संभव नहीं है कि सबको पहला क्रमांक मिल सकता। तो इस भौतिक जगत में सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो दूसरा स्तर जो है इच्छा का स्तर है, इच्छा के स्तर पे मुझे कुछ चाहिए इसी में भगवान के पास जाता हूँ। और यह तो सकारात्मक है, हम डर नहीं रहे भगवान से, पर फिर भी यह प्रेम का संबंध अभी तक नहीं है, धंधे का संबंध है, उसके ऊपर है कि कर्तव्य का संबंध, कर्तव्य के उसमें समझते हैं कि भगवान इच्छा के समय हम चाहते हैं कि भगवान ये दे वो दे वो दे, इसीलिए हम भी पा जाते हैं। पर कर्तव्य के स्तर पे भगवान समझते हैं कि भगवान ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है और इसीलिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ, इसीलिए उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य। तो भगवान ने मुझे क्या दिया है पहले से, कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे पूजा पाठ करने से मेरे घर के किचन में अन्न नहीं आने वाला है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है अन्न पदार्थ अन्न कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अन्न आता है। ये एकदम सत्य है पर ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि हम हमारी मेहनत से केवल खाना नहीं उत्पन्न कर सकते, जो अन्न है वो निसर्ग से आता है। हमारे कितना भी विज्ञान प्रगतिशील क्यों हो, विज्ञान ने एक भी फूड प्रोडक्शन यूनिट नहीं बनाया है, सारे यूनिट है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। फूड प्रोडक्शन मतलब अन्न की उत्पत्ति, हम क्या कर सकते हैं हमारे विज्ञान से सारे फैक्ट्रियों से अन्न का परिवर्तन कर सकते हैं, अन्न की उत्पत्ति केवल निसर्ग से होती है, निसर्ग की जो फैक्ट्री है उसके मालिक भगवान है। तो हम सब भगवान पे ही निर्भर है हमारे अन्न के लिए, हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, पर यह मेहनत द्वितीय है। जिस तरह से रोज सुबह पंछी उठते हैं और पंछी उठ के ची 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 वो ढूंढने लगते हैं मुझे आज अनाज कहाँ मिलेगा, खाने को कहाँ मिलेगा, और वह इधर उधर जाके ढूंढते हैं। जब ये ढूंढते हैं तो उनको मेहनत करनी पड़ती है, पर उनके ढूंढने से अनाज की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान पहले से अनाज की उत्पत्ति करके रखते हैं, इधर उधर कहीं अनाज गिर जाता है और पंछी अपने प्रयास से ढूंढ के उसको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पंछियों का जो खोजना है अन्न के लिए वो द्वितीय है, और प्राथमिक क्या है, भगवान अनाज की योजना करते हैं। उस तरह से हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, पर हमारे मेहनत से अन्न उत्पन्न नहीं होता, तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये कर्तव्य की बुद्धि है, इससे समझते हैं वास्तव में विज्ञान के द्वारा हम भगवान हमारे कितना करते हैं वह और भी समझ में आता है। कैसे क्या, अभी हम भगवान न केवल उनको अन्न देते हैं निसर्ग के द्वारा, पर भगवान ही हमारा अन्न पचाते हैं। वास्तव में हमारी पचन क्रिया जो है उसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते जब तक वो काम नहीं करती, और जब वो काम नहीं करती तो वो हमें काम पे लगा देती है, ये दवाई लो, ये डॉक्टर के पास जाओ, ये करो वो करो। पर वास्तव में ये पचन होता है तो बहुत विलक्षण कार्य है। कभी आजकल डॉक्टर लोग होते हैं वो किसी को कुछ अगर हाथ खराब हो गया तो नकली हाथ लगा देते हैं, अगर वास्तव में हृदय काम नहीं कर रहा है तो पेस मेकर डाल देते हैं, किडनी काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस के लिए इंसुलिन लगा देते हैं। तो संशोधन एक प्रयास कर रहे हैं कि बहुत लोगों को पचन क्रिया की समस्या है, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी को पचन नहीं हो रहा है तो हम एक पचन करने वाला एक मशीन पेट में डाल देते हैं, तो फिर जो भी खाना है पच जाए। तो ऐसे संशोधन करने का वैज्ञानिक प्रयास किया और देखा कि पचन क्रिया जटिल है इतनी मुश्किल है कि उसके लिए एक मशीन चलेगा नहीं, एक फैक्ट्री लगेगी और फैक्ट्री भी 2 मील लंबी फैक्ट्री लगेगी। तो अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया, थोड़ी कम हो जाएगी फैक्ट्री की लंबाई, फिर भी बहुत लंबी फैक्ट्री लगेगी। और फिर बोले कि बचत करते हैं हम तो इतनी मेहनत होती है उसमें, मान लीजिए अगर मैं 10 किलो का वजन है उठा के ले जा रहा हूँ तो मेहनत, हम काम कहते काम कर रहे हैं मतलब क्या, बड़ा वजन है और बड़े अंतर तक लेके जाना है। उसी तरह से हम एक हाथ भर के खाना भी खाते हैं तो उसका जो पचन होता है तो वह जीवा से पूरे जो शरीर से निकलता है, इसमें जो मेहनत होती है वो मेहनत इतनी होती है कि साधारण आदमी वो दिन भर में उतनी मेहनत नहीं करता है, उतने एक अन्न के घास को पचाने में मेहनत होती है। तो अभी ये मेहनत कौन कर रहा है, हम तो सिर्फ खाते हैं और भूल जाते हैं उसको। तो भगवद गीता में बताया गया है अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देहनाश्रितः प्राणामान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो पचन क्रिया है मैं योजना करता हूँ उसकी। तो वास्तविक कर्तव्य किस तरह के हम समझते हैं कि भगवान ने पहले से मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत ही मृत्यु की शैया पे होता है तो कृत्रिम पद्धति से उसको जीवित करते हैं, उसके पहले ऑक्सीजन देते हैं या फिर उसका हृदय चलाते रखते हैं, किडनी चलाते रखते हैं, तो इस पर बहुत खर्चा होता है करने में, कई बार 1 दिन के 1000 रुपये खर्च जाते हैं। तो संशोधन किया है कि हम तो सिर्फ कुछ ही प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, अगर सांस नहीं ले पाए तो सांस दे सकते हैं, किडनी काम नहीं कर रहे तो किडनी काम करवा सकते हैं। तो अगर काल्पनिक रूप से अगर ऐसे करेंगे कि हम कृत्रिम पद्धति से शरीर की सारी यंत्रणाओं को चलाने का प्रयास करेंगे तो एक दिन शरीर को चलाने के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं। तो मतलब हमारा शरीर कौन चला रहा है, हम तो नहीं चला रहे। तो भगवान हर रोज हमारे 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और लोग कहते भगवान क्या कर रहे हैं। तो वास्तविक कर्तव्य के स्तर पर हम समझते हैं कि भगवान पहले से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कृतज्ञ हो जाए। और उससे ऊपर का स्तर है प्रेम का स्तर। हम समझते हैं कि वास्तव में भगवान ही मेरे आराध्य देव, मेरे प्रेम की सबसे सर्वोच्च पात्र व्यक्ति है और मैं उसकी भक्ति ये कुछ भय के कारण नहीं कर रहा हूँ, कुछ इच्छा के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं उसके प्रेम के लिए कर रहा हूँ और यह सर्वोच्च स्तर है और इसके द्वारा हमें परमानंद की प्राप्ति। हम यहाँ से भगवद्धाम लौट जाते हैं और वहां पे हम परमानंद प्राप्त करते हैं और वास्तव में हम वही पे रहते हैं। तो अभी ये 4 स्तरों की बात क्यों कर रहा हूँ, प्रेम का स्तर यह हमारा स्वाभाविक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है। और जब हम लोग हरिनाम का जप करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, वो सोचते हुए कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, पर वहाँ वास्तविक भगवान के नाम लेने का उद्देश्य नहीं है। हम कैसे है कि हम भगवान यह सर्व ऐश्वर्यवान है, यहाँ पे लोग लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, भगवान जो है लक्ष्मीपति, वह सबके स्वामी है, सब ईश्वर के स्वामी है और हम लोगों की संतान है। तो हम एक राजकुमार के समान है हर एक, तो हम जो है भगवान से संबंधित है पर हम भगवान से संबंध भूल गए। कभी कभी आपने टीवी सीरियल में या मूवीज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई का पहाड़ से गिर जाता है, तो कार से जा रहा है पहाड़ से कार गिर जाती है नीचे और फिर जब नीचे गिरती है तो कैसे कैसे बच जाता है और नीचे खाई है और फिर जब गिरता है तो उसको याददाश्त चली जाती है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई बहुत अमीर राजकुमार है वो जिसे गिर जाता है पहाड़ से और एक खाई में गिर जाता है, अगर जहाँ पर खाई कोई आदिवासी लोग रह रहे हैं वो उसको बचा लेते हैं, वो कोई घास पे वगैरह गिर जाता है बेहोश हो जाता है, सिर पे चोट लगती है, फिर होश में आता है, उसको पूछते हैं कि वो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। व्यक्ति भूल याददाश्त चली जाती है और अगर याददाश्त चली जाती है तो क्या करेगा, पता नहीं कहाँ से आया है वो आदिवासी लोग उसे कहते हैं ठीक है तू हमारे साथ रहो, हमारे साथ तुम जीवन जियो। और फिर उसको बोलते हैं ये आप जंगल में जाओ और ये इसे लकड़ियाँ तोड़ के वो लकड़ियाँ ले लिया और वो राजकुमार है पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है लकड़ियाँ उठा के ला रहा है
फिर उसके पिता अपने घर में मेरा पुत्र कहाँ चला गया ढूंढ रहे हैं, और फिर वो यहाँ पे आते हैं इस ओ पहाड़ से नीचे उतर के इस ग्राम में आते हैं खाई में, और वो देखते हैं उनका पुत्र यहाँ पे बड़े बड़े भर उठा के ले जा रहा है, और वे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ, तुमको जानकर मुझे बहुत काम है, समय नहीं मेरे पास। इसलिए बोलते हैं तो फिर पिता क्या करते हैं एक डॉक्टर को लेकर, और आपको पता है किसी की याददाश्त चली गई है तो फिर क्या करते हैं याददाश्त करने के लिए क्या करते हैं,
शॉप तो एक बात है वो दूसरा ट्रीटमेंट है।
पहला ट्रीटमेंट क्या है, हाँ पुरानी चीज याद दिला देते हैं, एक घड़ी याद है उनको, ये शर्ट याद है, ये बैग याद है, अलग अलग चीज याद कराते हैं और उससे धीरे धीरे याददाश्त आ जाती है। वैसे ही तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं मौका लेके भगवान से हमारे यहाँ पे आते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो वे हमें याददाश्त जगाने के लिए अलग अलग सुविधाएं देते, वो हमें बोलते हैं आप आ जाओ मेरे साथ, हम आने को तैयार नहीं होते तो वे एक डॉक्टर को लेकर आते हैं, डॉक्टर है गुरु, उनकी प्रतिनिधि है वो, और वे हमें उनकी याददाश्त जगाने के लिए अलग अलग सुविधाएं देते हैं, और उनकी याददाश्त के लिए प्रधान सुविधा जो है वो उनका नाम है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं वह क्यों कर रहे हैं, वह हमारी याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए। पर मान लीजिए ये छोटा ये लड़का है जो बोलता है मैं इतना बिजी हूँ समय नहीं, एक याद करना है समय नहीं, बहुत काम है, तो फिर जो डॉक्टर आएगा उनको बोलेगा ठीक है अगर तुम ये घड़ी की ओर देखोगे और कुछ याद आता है कि कुछ बोलोगे 10 मिनट के लिए तुम घड़ी की ओर देखो मैं तुमको एक चॉकलेट दे दूंगा, अभी उसकी दृष्टि से क्या है वो घड़ी की ओर देखना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चॉकलेट चाहिए और चॉकलेट के लिए कोई जरूरत नहीं है, पर डॉक्टर की दृष्टि से पिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है वो याददाश्त। तो ठीक उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम जब हमें साधारण पिता को याद है साधारण पिता ने कुछ याददाश्त पुनः जागृत नहीं करनी, तो इसीलिए उनके नाम का जप करने की जरूरत नहीं है, और जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें क्या करना है हमें याददाश्त पुनः जागृत करनी। तो जो लोग याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए रुचि नहीं है उत्साह नहीं है उनको शास्त्र बताते हैं ठीक है आप जप कर लो आपकी बीमारी चली जाएगी, आप जप कर लो आपको ये मिल जाएगा, आपको वो हो जाएगा, वो सब क्या है वो बाह्य फल है, अंतरंग फल जो है महत्वपूर्ण फल जो है वो याददाश्त की पुनः जागृति करना। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जप क्यों करते हैं, ऐसे नहीं है कि भगवान है, भगवान एक साधारण पिता है, बहुत दिव्य पिता है और उनको हम भूल गए, तो हमारी याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं।
छोटे बच्चे तो अपने पापा से चॉकलेट मांग के लिए आप क्या करते हैं,
भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन और जो काम क्रोध लोभ से चला जाता है जीवन हमारा प्रसन्न हो जाता है और ये परिवर्तन से हम समझाते हैं कि भगवान है और भगवान मेरे सामने आए ये मान करना वास्तव में एक अहंकार का लक्षण है क्यों क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे को अगर कोई छोटे मैं छोड़िए अगर कोई आदिवासी लड़का है कोई छोटे ग्राम में रह रहा है जंगल में और उसको पता है कि भारत के एक राष्ट्र प्रधानमंत्री मैंने तो कभी देखा नहीं प्रधानमंत्री को और वो कहता है हाँ प्रधानमंत्री है अगर प्रधानमंत्री है वो सारे भारत के नेता है तो मैं 10 बोलूंगा 10 बोलने के प्रधानमंत्री यहाँ पे आने चाहिए और नहीं आएंगे प्रधानमंत्री नहीं आता तो बोलेंगे प्रधानमंत्री का अस्तित्व छोड़ो तुम्हारे बुद्धि का अस्तित्व नहीं है तो कौन ऐसी मांग कर सकता है भगवान के लिए तो भगवान को हम देखना है तो हम बुद्धि से आसानी से उनके अस्तित्व बन सकते हैं और जब जुटने हो जाएंगे आध्यात्मिक स्तर पर जाएंगे तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं
तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता का मान है तो क्या वो मेरे घर में आएंगे आपके मंदिर मूर्ति वगैरह में वहां पे हाँ वहां पर तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे लेकिन क्यों क्योंकि आपको मंदिर मूर्ति में मान रहा हूँ फिर उनको रोक भगवान की क्या जरूरत है
बाल काट दिए उनको बाल रखने तो बोलते हैं कि कि अगर दरवाजे के सामने अगर हमारे घर के सामने कोई बाल ला के रख देता है तो हमें बुरा लगेगा, वैसे भगवान को भी उनके घर के सामने अगर बाल ला के रखते हैं तो उनको बुरा नहीं करेगा। तो वास्तव में भगवान बाल ग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। जो भगवान है वो बाल नहीं देखते हैं, बाल के पीछे क्या भाव है वो देखते हैं। और बाल के पीछे भाव क्या है, वास्तव में हम जो प्रेम अर्पण कर, प्रेम किसी के लिए व्यक्त करना है तो प्रेम व्यक्त करने की दो पद्धतियां, एक है उस व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, और दूसरा है उस व्यक्ति के लिए हम क्या त्यागते हैं। मान लीजिए अगर कोई बालक है, बालिका है, और वो बोले माता पिता ने आपसे बहुत प्रेम कर, तो माता पिता रहेंगे बेटा बेटी आपके भी एग्जाम आ रहे और पढ़ेंगे, मैं आपसे प्रेम करती हूँ पर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, तो नहीं। अगर हम सीधे प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं तो एक सीधे प्रेम दिखाते हैं। तो उस तरह से अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके सत्संग में आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका जप करते हैं, एक तरह से भगवान को प्रेम दिखाते हैं। पर दूसरा क्या है, अगर माता पिता बोलते हैं कि अभी हम जानते हैं कि अभी आपके इम्तिहान आ रहे हैं पर एग्जाम आ रहे हैं इसीलिए आप थोड़ा बिल्कुल कम कर दो, तो मान लो बाल अपना प्रेम कैसे दिखाता है माता पिता को, वो खेलकूद को त्याग नहीं सकते, वो त्यागना भी एक तरह से प्रेम का लक्षण। तो उसी तरह से अगर हम भगवान का हमारा प्रेम दिखाना चाहते हैं तो कुछ चीजों को त्यागने से भी हम हमारा प्रेम दिखाते हैं। तो क्या चीजों को त्यागना है, जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती है, जो चीजें हमें भगवान की विस्मृति कराती है, हमारी इच्छा है कि भगवान की स्मृति पुनः जागृत करें, तो जो चीजें हमें भगवान की विस्मृति कराते हैं, भगवान भुला देते हैं, वह त्यागना यह भी एक भक्ति का लक्षण है। और फिर शास्त्र में बताया गया है और हमारे अनुभव से भी हम समझ सकते हैं कि एक चीज जो हमें बहुत शारीरिक चेतना में डाल देती है वो है हमारे बाल। लोग बाल के इतना समय डालते हैं, हेयर स्टाइल कैसे है, ऐसा है वैसा है, परम गोपाल जी महाराज कहानी बता रहे हैं कैसे कि वो एक बिल्डिंग में थे, वहां पे जो लिफ्ट था बहुत स्लो था, आपको पता होगी कहानी मैंने बताई हो पहले, तो लिफ्ट बहुत स्लो था तो मालिक को सारे लोग उस बिल्डिंग में तो पूछते थे आके अच्छा मशीन लगाओ यहाँ पे और इस लिफ्ट को और पास बना दो, तो मालिक कंजूस था इतना पैसा खर्च करे, तो प्रक्रिया मशीन लगा के उसने दूसरा योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि वहां पे लिफ्ट के तीनों जो दीवार थे उसको आईने में परिवर्तित कर, और क्या हो गया लोग जैसे ही लिफ्ट में आते तो आईना देखते एक हाथ बाल पे दूसरे हाथ जेब में कंघी पे और फिर अपने बाल संवार लेते थे और भाई सारा कंप्लेन बंद हो गया, सारा शिकायत बंद हो गया। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि जो बाल है वह उसके उसके यहाँ इतना मन लग जाता है कि उससे बाकी सब चीज भूल जाते हैं। तो शास्त्र बताया गया लावण्यम केश धारणम, कलयुग में बाल कैसे है उसको ही व्यक्ति के सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। तो इसीलिए कभी क्या है हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पे हमारा भगवान से संबंध है, जहां तक हम उसको शरीर मानते हैं और शरीर के स्तर जीते हैं तब तक हम भगवान को भूल गए। तो इसीलिए बाल को काटना, बाल को त्यागना यह शारीरिक चेतना से मुक्त होने के लिए एक विधि बताएगी, और यह हजारों हजारों सालों से चल रही है कि कोई भी अभी कोई जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो हमेशा के लिए बाल में आते हैं, पर जो बाकी सब लोग होते हैं वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो ऐसी पीढ़ी है ऐसी पद्धति है तो कभी बाल काट देते हैं, तो वही पद्धति बालाजी ने बाला तिरुपति जाते हैं तो लोग बाल काटते हैं। तो अभी जब लोग बाल काटते हैं तो भगवान वहां पे काले बाल सफेद बाल डैंड्रफ वाले बाल नहीं देखते, भगवान वहां पे वो जो त्याग श्रद्धा भक्ति का भाव है वो भाव देखते हैं। इस दुनिया में हमसे होता है उसको अगर दूध और पानी मिलकर के देते हैं तो वो दूध देता है और पानी को बालू कर देता है, तो भगवान तो राज हमसे है, तो बालों के द्वारा अगर उनको भक्ति अर्पण करते हैं तो भगवान बाल बाजू में रख देते हैं, भक्ति स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए जो रीति रिवाज है उनको समझने के लिए जो हंस जैसे भक्त है उनके सामने जो आते हैं तो कि भगवान का क्या भाव है उसके पीछे।
आपको पता है धर्म का क्या होता है?
धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बात अमेरिका लंदन ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं।
बालकों को बेच के क्या करते हैं? श्रद्धा का धंधा होता है। तो अभी ये इस तरह से बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये रीति रिवाज इसीलिए चालू किए गए हैं कि बालकों को बेच के धंधा किया जाए। जो रीति बाल काटने का रीति जो है ये कांजी भाई के दादा के दादा के दादा के दादा के समय से चले आ रहे, हजारों समय से चले आ रहे। तो आजकल के आधुनिक समाज में ऐसी ऐसी लोगों की रहन शैली हो गई है, लोगों की स्टाइल में इतना हेयर स्टाइल में इतनी आसक्ति हो गई है कि लोग खुद के लिए बाल कम हो गए तो विग्स बनाना चाहते हैं, कृत्रिम बाल बनाना चाहते हैं और उसके लिए कटे हुए बाल को उनको चाहिए। तो हजारों सालों से जो बाल काटे जाते हैं उनको कचरे में फेंका जाता है। तो अगर कलयुग में ऐसी नित्य ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि वो बाल जो कचरे में लेके जा रहे हैं उससे अगर पैसा कमाया जा सकता है और वो लोग भगवान की सेवा के लिए जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बुरा क्या है? यह श्रद्धा का धंधा नहीं है, यह वेस्ट का धंधा है। जो वेस्ट में जा रहा है वह अभी उससे पैसे उत्पन्न करके इसको उपयोग किया जा रहा है। और अगर धंधे की बात है तो ओ माय गॉड जो मूवी था उसको 20 करोड़ के बजट में बनाया और उसका प्रॉफिट हुआ 80 करोड़। वो 60 करोड़ से किसी का कुछ भिखारी कुछ खाने को दिया, कुछ अनाथालय के कुछ किया। तो ये मूवी क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं श्रद्धा का धंधा, पर खुद कर रहा है श्रद्धा की निंदा का धंधा। तो अभी कई बार क्या होता है जब तर्क वितर्क होता है तो गलत उदाहरणों से लोगों को फंसाया जाता है। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि कई बार जो मंदिर और मेडिकेशन आता है उससे अनाथालय चलता है, अस्पताल चलता है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे है कि जो गुटका बेचते हैं वही अस्पताल जाने पर है। अभी इसका संबंध क्या है? क्या धर्म के कारण मंदिरों के कारण लोग अनाथ बन रहे हैं? क्या उसके कारण लोग भूखे मर रहे हैं? क्या उसके कारण सारे समस्या आया नहीं? नहीं, जो गुटका बेच रहे हैं वही बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं और फिर अगर वो अस्पताल खोलते हैं तो वो पाखंड है। पर वास्तव में धर्म कोई समस्या नहीं करता है, तो इसलिए उदाहरण पूर्णतः गलत है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये लोग काला पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी और उसको डोनेशन में दे देते हैं। तो वास्तव में इसका धर्म और मंदिर से क्या लेना देना है? अगर कोई स्कूल में जाता है और स्कूल चला रहा है तो क्या पैसा काला है क्या पैसा सफेद है यहाँ जांच करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई पाठशाला चला रहा है, पाठशाला को चलाने के लिए कोई मदद करता है तो पाठशाला के अधिकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि पैसा कहाँ से आया है। अगर मान लीजिए कोई मंदिर में आता है और मंदिर में कोई भुट्टी में 5 रुपए डाल रहा है तो उसको हम रखेंगे काला पैसा है सफेद पैसा है? पूछ नहीं सकते। पर प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि जो भी धन जो डोनेशन देता है उसको हमें भी कुछ देना चाहिए। और क्या है हमें क्या हम क्या देते हैं? ग्रंथ देते हैं, ज्ञान देते हैं। और वास्तव में अगर वो ज्ञान स्वीकार करता है तो उससे वो समझ जाएगा कि मुझे अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, जो ब्लैक पैसा है वो नहीं करना चाहिए। पर जो जिम्मेदारी है इसके लिए, ये जिम्मेदारी धर्म की नहीं है, मंदिरों की नहीं है। तो जो लोग अगर दान देना चाहते हैं, वो दान देने का उद्देश्य क्या है कि ये धंधा नहीं है। क्या होता है धर्म का उद्देश्य अंत में कि हमें हमारा हृदय भगवान को अर्पण करना है, भगवान के भक्त बनना है, भगवान को प्रेम करना है। पर क्या है हमारा हृदय दुनिया के बहुत सी चीजों में लगाया हुआ है। शास्त्र कहते हैं ठीक है अगर आप अपना हृदय अर्पण नहीं कर सकते भगवान को, तो हृदय में जो है वो अर्पण कर लो। हृदय अर्पण नहीं कर सकते तो हृदय में जो है वो अर्पण कर। हृदय में क्या है? धन से आसक्ति है, तो धन जब अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हम भगवान को हमारे हृदय में जगह देते हैं और उससे हमारे भक्ति में प्रगति होती है। तो इसीलिए ये यहाँ पे शास्त्र है, आचार्य है, वो क्या बताते हैं कि सबका किसी ना किसी तरह कल्याण हो जाए। तो कोई अगर गुनाह भी कर रहा है तो ऐसे नहीं कि धर्म उसको पुनः करने को बोल रहा है, मंदिर उसको पुनः करने को बोल रहा है। वास्तव में वह थोड़ी तो भक्ति की शुरुआत हो जाए, इसीलिए उसको भी भगवान की सेवा करने का मौका है। वो पैसे भी पैसे कमाए वो भगवान को दे सकता है, पर अगर वो भगवान के भक्तों के संबंध में आता है तो भक्तों को ज्ञान देते हैं किस तरह से आपको जीवन जीना है, और फिर वो अनैतिकता से नैतिकता तक भी आ जाए। तो इस तरह से वो एक प्रगतिशील क्रियाशील विधि है जिससे कि सब लोगों की प्रगति हो सकती है।
जिस तरह वो माफिया वाले जन्म दिखा के जा रहा, ये भगवान दिखा के जा रहा है। डॉक्टर भगवान सबके बच्चे को बहुत खराब है, वो मालिक है, उसको काम सब योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है, क्या है ये? वो बच्चे का अभी अभी तक फायदा हुआ, उसको सांस तो नहीं लगता। ये सबके इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंद कर दिया, और जीते जी तो छोड़िए ये आपको अगले जन्म के लिए भी दिलाते।
तो अभी यहाँ पे वापस एक और उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे है कि जैसे कोई गुंडे होते हैं वो बंदूक दिखाते हैं, कहते हैं हफ्ता दो। वैसे वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं आप रीति रिवाज करो, आपको शनि लग गया है, मंगल लग गया है, आप रीति रिवाज करो और उससे उसे पैसा कमा लेते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, जो गुंडे होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम ज्योतिष के पास जाते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में कि अगर जो गुंडे जोर जबरदस्ती से करते हैं, अगर हमारी श्रद्धा है तो हम धर्म प्रधान के लोग बनाते हैं। और वास्तव में दूसरा एक महत्वपूर्ण फर्क ये भी है कि अगर वो गुंडों की बात नहीं मानेंगे हम, उनको धक्का नहीं देंगे, तो वो खुद ही हिंसा करेंगे, वो ही हमारे लिए समस्या क्रिएट करते, समस्या बनाएंगे, पीटेंगे, उध्वस्त करेंगे। पर ऐसे नहीं है कि अगर हम धर्म के कारण कोई पुजारी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, ऐसे नहीं है कि वो हमारे साथ समस्या निर्माण कर रहे हैं। तो वो समस्या निर्माण नहीं कर रहे हैं, जो समस्या पूर्व से है वो हमें बता रहे हैं। ऐसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि ये शिशु है उसको जन्म जा, उसके हृदय को छिड़का रहे हैं। तो अभी डॉक्टर जो कर रहे हैं, क्या डॉक्टर समस्या निर्माण कर रहे हैं? डॉक्टर जो समस्या पहले से अस्तित्व में है डॉक्टर उसके बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई एक पहाड़ी रास्ते में जा रहा है और वहां पे एक निशाना है कि तेजी से मत जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो खाई में गिर जाएंगे, तो अगर ये वार्निंग है, ये जो है चेतावनी है, तो चेतावनी और धमकी एक नहीं है। चेतावनी मतलब खतरा पहले से है और खतरे के बारे में जानकारी दी जा रही है, धमकी मतलब हम खुद खतरा निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति जो धमकी दे रहा है वह खुद खतरा निर्माण कर रहा है, जो गुंडे है वह धमकी देते हैं, जो डॉक्टर है वो चेतावनी देते हैं। तो ये डॉक्टर जो है वह शारीरिक स्तर बीमारी है उनके बारे में चेतावनी देते हैं। तो जो ज्योतिष है, जो शास्त्रज्ञ है, वह ग्रहों और कर्मों के डॉक्टर, वो उसके बारे में जो बीमारियां है उसके बारे में चेतावनी देते हैं। तो इसलिए यह जो उदाहरण है पूर्णतः गलत है। और जहां तक इस तरह से डराने की बात है, वो वहां पर उद्देश्य डराना नहीं है, चौकन्ना करना है। और ऐसे हो सकता है कि कुछ ज्योतिष ऐसे है जो भ्रांत रूप से ही लोगों को फंसाते हैं, ये करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, हो सकता है ऐसे। और उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ऐसे फंसना नहीं है तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और उसमें क्या सत्य है क्या गलत है। अभी कुछ महीने पहले वो एक सत्यमेव जयते ने आमिर खान का एपिसोड दिखाया था, कैसे जो डॉक्टर होते हैं कई बार डॉक्टर बेईमानी करते हैं और लोगों से बहुत पैसा ले लेते हैं। तो ये सत्य है कि ऐसे लोग हैं डॉक्टरों में भी जो बेईमानी करते हैं, पर अगर मान लीजिए उसके बाद में उस जो एपिसोड था वो उसका वो निष्कर्ष बोलते हैं कि क्या है, डॉक्टर बेईमान है, जो दवाई है वो भी लेली फंसाती है, इसीलिए डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत लो, सेहत अच्छी है पर डॉक्टर और दवाइयां बुरे हैं। तो भी ऐसे जल्दी से क्या फायदा होगा? तो उसी तरह से अगर कोई कहता है भगवान अच्छा है पर सारे धार्मिक गुरु है, धार्मिक शिक्षक है बुरे हैं, सारे रीति रिवाज बुरी है, तो वो तो वैसे ही है, कहना सेहत अच्छा है पर डॉक्टर बुरे हैं, दवाइयां बुरी हैं। पर क्या संदेश दिया था उस कार्यक्रम में कि आप चौकर में रहो, सब लोग जो डॉक्टर है वो अच्छे ही ऐसे नहीं है, आप थोड़ी आपकी बुद्धि इस्तेमाल करो, अलग अलग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करो मेडिकल शास्त्र के बारे में, और फिर आप अच्छी तरह से डॉक्टर कौन है कुछ ना। तो उसी तरह से हम धर्म के मामले भी कोई भी व्यक्ति कोई थोड़ा श्लोक बोल लेता है, कोई थोड़ा एक भगवे वस्त्र पहन लेता है, लंबी दाढ़ी रख लेता है, तो ऐसे नहीं है कि वो धार्मिक व्यक्ति है। हमें बुद्धिमत्ता से जांच करनी चाहिए। भगवदगीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान की चेतावनी देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो यजन्ते नाम यज्ञ स्ते, वो केवल नाम के लिए यज्ञ करते, मतलब क्या दिखावे के लिए करते, खुद को धार्मिक दिखाते हैं ताकि जिसके द्वारा लोगों को फंसा सके। तो हमें चौकन्ना रहे, तो ऐसे हो सकता है कि लोगों को कोई फंसाया जा रहा होगा, तो उसके लिए क्या शिक्षण चाहिए? ऐसे नहीं है कि सबको जो बुरा, सबको सारे धर्म को बुरा बोलते हैं उसको ठुकरा दे, हमें शिक्षण चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिससे कि हम भेद कर सकें कि यह अच्छा है कि बुरा, जैसे हम डॉक्टर साहब भी करते हैं। और जहाँ तक ये अगले जन्म की बात है, अभी अगले जन्म के बारे में ये धमकी नहीं है, चेतावनी है, प्रकृति हमें बताती है कि आप जिस तरह से जियोगे उसके अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा। भगवान बताते हैं, भगवान मनियम वा किसन भावम गजत्यन्ते केलेवरम तंतनिवैति कौन्तेय सदा तद्भावदामितः। तो कहते हैं जिस तरह से आप विचार कर, आपकी विचारधारा होगी उसके अनुसार आपको आपका पूरा शरीर मिलेगा। तो अगर कोई मानव बहुत मांस खाता है, तो अभी मांस बहुत खाता है तो हमारा मानव शरीर जो है मांस खाने के लिए उचित नहीं है। हाँ, जानवर को करके काट के खा नहीं सकते, ना हमारे आंखों में, ना हमारे दांत है, ना हमारी पचन क्रिया है उस तरह से, तो क्या करते हैं हम कसाई खाने बनाते हैं, फिर उनको काट के फिर खाते हैं। तो अगर व्यक्ति बहुत मांस खाने से आसक्त है तो उसको किसी ने बोलेगा कि आपको मांस ही खाना है तो मानव शरीर का क्या फायदा है, मानव शरीर तो अनुकूल नहीं है, मैं तुमको एक ऐसा शरीर दे दूंगा जहाँ पर आप मांस आसानी से खा सकते, एक शेर का शरीर हो सकता है, कुत्ते का शरीर हो सकता है, एक गीदड़ का शरीर हो सकता है। तो ये क्या है, ये अभी कोई धमकी नहीं है, चेतावनी है, जिस तरह से आप जियोगे उस तरह से आपको फल मिलेगा, यहाँ पे धमकाने की बात ही नहीं है। पूछा गया धर्म की परिभाषा क्या है, तो अभी धर्म की परिभाषा को जवाब ही देना है, क्या सिर्फ शब्दों का खेल कर रहे हैं, शब्दों का खेल क्या कर दिया, जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य नहीं हो सकता है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म की जरूरत नहीं। अब ये तो सिर्फ बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसका क्या सबूत है, क्या तर्क वितर्क है? धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का परिभाषा वास्तव में कई स्तर पे है, हम व्यावहारिक स्तर पे बोलते हैं, हम जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोगों के जन्म से जो धर्म है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उस आधार पर तय करते हैं। पर दूसरा जो अर्थ है धर्म का, कि वो अर्थ है कि हमारा स्वभाव, ध्रुव धर्म शब्द आता है वो ध्रुव से आता है, ध्रुव मतलब धारा, जो हमारा स्वभाव है जिसके द्वारा हम धारण होते हैं, जिसके द्वारा हम जीते हैं, वह वास्तव में धर्म है। तो धर्म क्या है, जो हम प्रेम करना और वो प्रेम को सेवा के द्वारा व्यक्त करना, यही असली धर्म है। तो असली धर्म क्या है, हम सबका धर्म यह है प्रेम करना और प्रेम के द्वारा सेवा करना। अगर व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति निर्जीव जैसे हो जाता है। तो और ये जो प्रेम करने की प्रवृत्ति सब में है, पर जब तक हमें प्रेम करने की प्रवृत्ति अस्थाई चीजों की ओर डालते हैं, क्षणिक चीजों की ओर डालते हैं, तब तक हमें दुख मिलता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है। अगर किसी से प्रेम करता हूँ और फिर वो चीज चली जाती है, मैं चाहता हूँ भारत की क्रिकेट टीम से बहुत आ सकता हूँ, उसको मैं प्रेम करता हूँ, तो जब भारत की क्रिकेट टीम जीतती है तो मैं बहुत सुखी होता हूँ, बाद में हार जाती है तो दुखी हो जाता है। जब हम प्रेम की भौतिक चीज से करते हैं तो हमें थोड़ा सुख मिलता है और दुख मिलता है, पर जब हम शाश्वत चीज से प्रेम करते हैं तो उससे हमें शाश्वत आनंद मिलता है। और ये सर्वोत्कृष्ट शाश्वत चीज जो है वह है भगवान। इसीलिए भगवान से प्रेम करना और भगवान से प्रेम जागृत करने की जो विधि है उसको धर्म कहते हैं। तो यही तो असली सत्य है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, मैं रोज रात को सो जाता हूँ और भूल जाता हूँ मैं कौन, अलग अलग प्रकार से मैं देखता हूँ, क्योंकि शारीरिक जीवन के सत्य नहीं। असली जीवन जो है हमारा आध्यात्मिक स्तर का जीवन है। तो धर्म की परिभाषा क्या है? वो विधियां जिससे कि हम भगवान का प्रेम जागृत कर सकते और उसके द्वारा हम भगवत धाम जाकर परमानंद हो सकते, और यही असली सत्य है। सवाल था कि धर्म का धर्म जीवन की व्यक्ति जीवन में क्या करता है, तो कह रहे हैं कि धर्म व्यक्ति को बेबस बना देता है या आतंकवादी बना देता है। तो हम दूसरा खंड के साथ दो चर्चा करेंगे, क्या धर्म व्यक्ति को आतंकवादी बना देता है, क्या धर्म व्यक्ति को हिंसक बनाता है। अगर ये सत्य है तो फिर जो जो दुनिया के इलाके हैं जहाँ पे कोई धर्म नहीं है, जहाँ पे लोग नास्तिक है, वो पूरी हिंसा से मुक्त होनी चाहिए, वहां पे सब शांति रहनी चाहिए। तो क्या ऐसे हुआ है इतिहास में? बहुत ही कम ऐसे राज्य थे जो पूरे नास्तिक थे, पर अभी के आधुनिक इतिहास में चाइना और रशिया, यूएसएसआर था पहले सोवियत रशिया, ये दोनों राष्ट्र थे वो एक ऑफिशियली सरकारी स्तर पर नास्तिक थे, और वहां पे धर्म का बहुत दबोचा गया और धार्मिक लोगों को बहुत मारा गया, प्रेरित किया गया। और फिर क्या ये दो प्रांत शांति थे? तो अगर मैंने मेरे किताब में इसके स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं संशोधन में, वैज्ञानिक संशोधन की, जो 1920 से लगभग 2000 तक जो रशिया और चाइना उनमें जितने लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे हुई मृत्यु सरकार ने ही उन लोगों को मारा, तो जो मृत्यु है वो कितने लोगों की मृत्यु हुई, जितने इस इतिहास के इस भारत विश्व के पिछले सदी में सारे देशों में सारे युद्धों में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु इन दो नास्तिक देशों में हुई, कई गुना ज्यादा। तो हिंसा किससे होती है? नास्तिकवाद से होती है। क्यों नास्तिकवाद से हिंसा होती है? क्योंकि नास्तिकवाद से क्या होता है, व्यक्ति के जीवन को मौल्य नहीं है, हम एक ही बार जी रहे हैं, हम केवल एक रसायनों का ढेर के समान है, और मुझे अगर भोग करना है, कोई भगवान नहीं है, कोई कर्म का नियम नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, अगर मुझे भोग करना है तो बीच में आ रहा है थोड़ा दो और भोग कर, तो क्या है मानवीय जीवन की कोई कीमत नहीं रहती, उससे हिंसा बढ़ जाती है। अभी जब नास्तिकवाद होता है तो लोग गर्भपात करते हैं, अभी गर्भपात जो है चाइना में है, कितना आपको पता है 33 करोड़ बालों का गर्भपात हुआ, 33 करोड़, मतलब भारत की संख्या लोकसंख्या का लगभग एक तिहाई, इतने लोगों का पिछले सिर्फ 30 सालों में गर्भपात हुआ है। और जो गर्भपात क्यों होता है, लोग सोचते हैं कि शिशु क्या है, ये केवल एक रसायनों की रसायनों का एक टिश्यू है, रसायनों का एक पिंड है बस। तो इस तरह से जो हिंसा है, तो अभी क्या हो गया है, कुछ नास्तिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम गर्भपात तो करते हैं, गर्भपात को कानूनी मान लिया है, और लोग उन्होंने भी एक बड़े वैज्ञानिक जर्नल में देख लिखा कि अगर कोई माँ चाहती है कि शिशु का जन्म हो जाए और उसके बाद वो उसको मारना चाहे तो मारने का मौका देना चाहिए, वो काम भी कर देना चाहिए। तो जब यह प्रस्ताव लगा था तो बहुत लोगों ने विरोध किया, बोले कैसे आप यीशु का जन्म हो गया है, कैसे आप उसको मार सकते। तो उनका वो कह रहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टि से शिशु वो गर्भ के अंदर है या बाहर है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप अंदर मार सकते हैं तो बाहर मारने में क्या फर्क है। तो ये क्या है, नास्तिक विचारधारा का परिणाम। तो अगर अभी बाहर है मार डालेंगे तो फिर बाहर कितने वो कब तक मारेंगे, तो एक दिन का है, एक महीने का है, एक साल का है, वो मारने की कुछ उसकी मर्यादा ही नहीं है। तो नास्तिकवाद जो है ये हिंसा उत्पन्न करता है। जब हिटलर जर्मनी में राजा के समान था तो उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि जो भी लोग फिट नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के लिए बोझ है, उनको मार। तो क्या है, जो लोग अंधे हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग बहरे हैं, जो लोग लंगड़े हैं, उन सबको मार। और वास्तव में वैज्ञानिकों की प्रक्रिया के द्वारा इनको मार डाला गया, और उसको यूजेनिक्स नाम के विज्ञान के ब्रांच कहते हैं कि बुरे लोगों को मार डालना। तो ये सब क्या होता है, ये अधर्म और नास्तिकवाद का परिणाम। तो हिंसा कैसे होते हैं, लोग अगर लोगों को विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं है, जो मेरे कार्य है उसको मुझे फल देना पड़ेगा, तो किसी को भी मार डाल। और जहां तक धर्म के कारण हिंसा की बात है, हो सकता है कि धर्म के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं, पर वह धर्म के कारण आतंकवादी नहीं बन रहे, धर्म के दुरुपयोग के कारण बन रहे। तो जो लोग होते हैं, कभी कभी लोग लगता है कि मैं इस धर्म का हूं, वो उस धर्म का है, और मुझे मेरे धर्म के विजय के लिए उस व्यक्ति के धर्म को मार डालना चाहिए, उस व्यक्ति के उस धर्म के व्यक्ति को मार डालना चाहिए। तो यह क्या है, यह अज्ञान की बात है। वास्तव में सब धर्म भगवान दिए है और वह भगवान के पास जाने के मार्ग है, पर जब लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लोगों को लगता है कि मेरा ही धर्म असली धर्म है, बाकी सब धर्म गलत धर्म है और बाकी सब धर्मों को मार डालना चाहिए। पर अगर अच्छा शिक्षण होगा तो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। जब प्रभुपाद जी ईरान में गए थे तो तभी ईरान में प्रचार कर रहे थे, और नीचे जो नमाज की प्रार्थना चालू होगी तो प्रभुपाद जी ने आंखें बंद कर ली है और वो हाथ जोड़ के पूरी वो नमाज को सुन लिया। और जब उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखें बहुत उज्जवल लग रही थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से कहा, कितना सुंदर था। तो भक्त थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी क्या अच्छा नहीं होता, वो सब हरे कृष्ण नाम को तजर करते। प्रभुपाद जी हम दुखी हो गए, वो कहने लगे, तुम मुझे संकीर्णवादी क्यों बना रहे हो, वो उनकी वजह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम हमारी वजह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो तुम मुझे संकीर्णवादी क्यों बना रहे। तो अगर हमें धर्म का असली शिक्षण होगा तो हम समझेंगे कि वास्तव में भगवान के प्रति भगवान श्रद्धा व्यक्त करना, हमें भक्ति करने के लिए अलग अलग विधियाँ है, और फिर धर्म से सहनशीलता है, आतंकवाद नहीं है। तो अगर आतंकवाद आ रहा है धर्म से क्यों आ रहा है, वो अज्ञान के कारण। वो जब लोगों को धर्म का तत्व ज्ञान पता नहीं है और संकीर्णवाद आता है तो उससे आतंकवाद आता है। तो इस तरह से ये सब भ्रांत धारणा है। और क्या धर्म व्यक्ति को लाचार बना देता है, कैसे लाचार बनाएगा। और वास्तव में धर्म व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। जो दुनिया में समस्या आती है हमारे लिए, तो हम समझते हैं कि भगवान मेरे साथ में, भगवान मेरी मदद करेंगे, तो उससे हमारे हमें एक अंतर्गत शक्ति मिलती है। और ये वैज्ञानिकों ने बहुत संशोधन किया है, और मैंने कई बार देखा है, किताबों में लिखा है कि पिछले 80 सालों से रिसर्च चल रहा है कि धार्मिक लोग और अधार्मिक लोग, और कौन लोग मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अधिक तंदुरुस्त रहते हैं। तो देखा है कि जो मानसिक समस्याएं होती है, जो कुछ बुरी आदतें होती है, डिप्रेशन होता है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है, ये सब अधार्मिक लोगों में अधिक होती है और धार्मिक लोगों में कम होती है। एक बहुत बड़ा अधार्मिक तत्वज्ञानी था, नास्तिक तत्वज्ञानी था, और उसका सिद्धांत क्या था भगवान को करा दिया तो जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहा। तो उसका तत्वज्ञान था कि पूरा जीवन व्यर्थहीन है। तो तत्वज्ञान का एक ही सवाल है कि आत्महत्या आज करे या कल करे, क्यों करना, वो नास्तिकवाद के कारण। और कई ऐसे बड़े बड़े नास्तिक आनंद है, एक नीच नाम का था, वह अपने आखिरी साल तक पागल बना था। दूसरा एक अल्बर्ट कैमस था, उसने आत्महत्या कर लिया अपना न्याय के साथ। तो क्या है लाचार तो क्यों आता है? अगर हम सोचते हैं कि मैं इस दुनिया की समस्याओं को सामना करने में बिल्कुल अकेला हूँ और कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं है, तो उससे जो बोझा है और हमारे सिर पर बढ़ जाता है, सहन नहीं कर पाएंगे तो उससे हम लाचार बन जाते हैं। पर जब हम समझते हैं कि भगवान मेरे साथ में है, मन चित्ता सदा गंगाई मत प्रसाद करिष्यसि अथ चेतोऽहं कवरा नश्नोष्यसि विनश्यसि। भगवान कहते हैं कि आप मेरी चेतना करो, आप मेरा स्मरण करो, मेरी कृपा से आप समस्याओं को पता चल जाए, हमें अंतरंग शक्ति मिलती है जिससे हम सहन कर सकते हैं। और पर जो वास्तव में नास्तिक हुआ व्यक्तियों को आचार बनाता है, धर्म आचार नहीं बनाता है, धर्म व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। तो किसी को सवाल है इसके बारे में? मोहनी में कई और विषय भी थे, मैं उनके बारे में चर्चा कर सकता हूँ अभी, ऐसा नहीं है। पर किसी को कुछ ये सवाल होते तो मैं सारा सवाल उठा लूँ और जान जवाब देना चाहूँगा। यस तो जो ज्योतिष शास्त्र है उसको भक्त ज्योतिष शास्त्र के बारे में कितना क्या करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र जो है एक वैदिक शास्त्र है और उसका जो वह एक प्रामाणिक शास्त्र है, वेदांग है, वो उपवेदांग है उसमें है। पर आजकल जो ज्योतिष है कई बार वो केवल एक धंधे के रूप में करते हैं, तो इसीलिए आजकल के ज्योतिषियों के जो भविष्यवाणियां हैं कहाँ तक सच होगी कहाँ तक सच्ची होगी उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए साधारणतया भक्तों को हम क्या समझते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ नियम है और उन नियमों के बारे में हमें शास्त्र पता चलता है और उन नियमों के बारे में अलग अलग देवतागण भी है। तो कैसे होता है कि हमारे जो कुंडली होती है, कुंडली कैसे कार्य करती है, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार एक विशेष पल पे हमारा जन्म होता है और उस पल पे जो ग्रहों की रचना है वह हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं उसका लक्षण दे दिया और उसके बाद पता चलिए आपका मंगल ऐसा है, मतलब क्या ऐसे नहीं कि वो मंगल हमें परेशानी कर रहा है, हमने ही पूर्व जन्म ऐसे कर्म किए हैं उसके कारण हमारे जन्म के समय वो मंगल उस जगह पे। तो इसीलिए कभी पता जाता है कि वो मंगल की पूजा करो उससे आप उस तरह से निकल सकते हैं। पर भगवान प्रबंध बताते हैं कि सर्वधर्मांतरित्यज्य तो मंगल बड़े शक्तिशाली है, पर मंगल के स्वामी भगवान कृष्ण है, शनि के स्वामी भगवान कृष्ण है, तो उनकी शरण में जाते हैं तो हमें जो ग्रहों की बात बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, खास करके एक दो चीजें जो है कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्योतिष अच्छा है तो हमें नवजात शिशु जन्म हुआ है तो उसकी प्रवृत्ति क्या है यह समझने को थोड़ा मार्गदर्शन दे सकता है। तो मतलब क्या कि कभी माता पिता को चाहिए मेरे पुत्र को इंजीनियर बनाना है, मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाना है, पर अगर उसकी प्रवृत्ति जो है कुछ और है तो उसको जबरदस्ती एक दिशा में डालने से उसका जीवन खराब हो जाता है। तो प्रवृत्ति समझने के लिए हम थोड़ा ज्योतिषीय मार्ग ले सकते हैं, पर हरेक बार एक हरेक समस्या के लिए कैसे कुछ चीजें है जिसके लिए हम ज्योतिषीय मार्ग से ले सकते हैं, पर हर चीज के लिए हम ज्योतिषीय मार्ग जाने की जरूरत नहीं है, उसको स्वीकार करते हैं, पर हम भगवान की श्रद्धा रखते हैं, भगवान हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। क्लियर? सवाल है? जो मन्नत की विधि है भगवान से कुछ मांगना,
यस व्हाट एवर जनरल ह्यूमन बीइंग कैन दे आस्क अबाउट गॉड, ये कर दो ये हो जाएगा, दैट इज राइट और रॉन्ग?
ओके, भगवान से कुछ मांगना ये उचित है या अनुचित है इसमें सही या गलत की बात नहीं है। हम जरूर भगवान से मांग सकते हैं, पर हमें हमारी भक्ति हमारे मांग की पूर्णता पे निर्भर नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम क्या समझते हैं? भगवान हमसे और एक मांग है, भगवान हमसे और इच्छा है, अगर हमें लगता है कि मेरे जीवन में कोई जरूरत है, अगर मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी जरूरी नहीं मिलेगी, मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ तो नौकरी में तो भक्ति कैसे बनूंगा, तो भगवान से तुरंत मांग सकते हैं। हमारा जो भगवान से संबंध जोड़ना मतलब क्या, हमारे जो हृदय में समस्या है तो भगवान को
मेरा सवाल ये है कि मतलब ये करने से मैं ये कर दूंगा, या ये जो मानते हैं कि मतलब ये अगर मैं पास हो गया तो ये कर दूंगा, ये चढ़ाऊंगा,
अगर ये है अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो यह जो भाव है यह हम यह भगवान से धंधे का भाव जैसे कि मैं ये करूंगा आप ये कर दो फिर मैं ये कर दूंगा, तो ये भाव है इतना अच्छा नहीं है। पर तो क्या है कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते, पर अगर किसी ने किसी ने किसी ने भगवान के पास शक्ति आ जाता है, भगवद गीता के सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कई प्रकार से भक्तों के लोगों के पास आते हैं, तो उनमें से एक पद्धति है कि आर्तो अर्थात जिज्ञासी और ज्ञानी, आर्तो मतलब जो दुख में है भगवान के लिए दुख निकाल देते हैं, या अर्थात आप मेरे लिए दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो भगवान कहते हैं वो भी अच्छा है, वो भी लोग सुखी है, पर भगवान चाहते हैं और विश्व 17-18 श्लोक बोलते हैं कि इससे बेहतर है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिए और शाश्वत रूप से भक्ति में लग जाए, तो इसलिए अगर कोई ऐसे कर रहा है तो अच्छा है, भगवान किसने किसी भगवान के पास आ रहा है, पर साथ साथ उस व्यक्ति को बोला अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो कौन है वो व्यक्ति जिसे मांग रहे हैं उसके बारे में आप समझने का प्रयास करें, आप भगवदगीता पढ़ें तो उससे क्या हो बौद्धिक स्तर पर विकास हो जाए, क्या होगा जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं कि आप मेरे लिए कर दो, तो क्या उसमें हम भगवान में श्रद्धा रखना है, तो दो चीजों में श्रद्धा रखना है, भगवान की शक्ति में श्रद्धा और भगवान की बुद्धि में श्रद्धा। भगवान की शक्ति में श्रद्धा मतलब क्या, अभी मुझे मेरे एग्जाम में पहला आना है और भगवान मुझे पहला ला सकते हैं, तो इसीलिए भगवान की शक्ति में भी श्रद्धा है, पर अगर पहला नहीं आता क्या है भगवान के कुछ फायदा ही नहीं, भगवान नहीं है, भगवान कुछ काम नहीं करते, अगर ऐसा जो विचार करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारी भगवान में आधी श्रद्धा है, भगवान की शक्ति में श्रद्धा है पर भगवान की बुद्धि में श्रद्धा नहीं, हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि भगवान की बुद्धि से अच्छी है, मुझे लगता है कि मेरी ये मुझे चाहिए, और अगर भगवान नहीं देते तो भगवान मूर्ख है, नहीं वास्तव में भगवान हमसे बहुत बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि उनसे जाती, तो जब हम भगवान की शक्ति में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हमारे भगवान की बुद्धि में श्रद्धा भी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा हम समझेंगे कि अगर कभी कभी मैंने जो मांगा है वो पूरा नहीं हुआ तो भी भगवान मेरे परम चीत है, और कुछ ऐसी योजना हो सकती है जिससे कि जो मैं मांग रहा हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं है, भविष्य में अच्छा हो सकता है मेरे लिए, क्या है एक तरह से हम सब पेशेंट हैं, भगवान डॉक्टर है, तो जो पेशेंट मांगता है वो हमेशा उस पेशेंट की सेहत के लिए अच्छा होगा ऐसे नहीं है, तो डॉक्टर कभी वो चीज़ देगा कभी चीज़ नहीं देगा, तो हमें भगवान को डॉक्टर के रूप में देखना चाहिए, अगर हमें कुछ जरूरत है तो मांग सकते हैं, भगवान से बोल भी सकते कि भगवान आप ही मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए कर दूँ, वह धंधा ही होगा ऐसे नहीं है, वह भी हमारी श्रद्धा का एक लक्षण हो सकता है कि तो हम भक्ति में श्रद्धा बोल सकते कि भगवान अगर ये हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये करूँ, बुरा नहीं है पर वो सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि वो उसमें हम भगवान की बुद्धि की भूमिका को समझ नहीं रहे हैं, जब भगवान की बुद्धि की भूमिका समझते हैं तो हम समझेंगे कि भगवान जो आप मेरे करेंगे वो सर्वोत्कृष्ट है, तो मैं आपके शरण में आऊंगा, मुझे लगता है कि मेरे अच्छा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये कर दीजिए, पर अगर आपकी बुद्धि से आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है तो जो मेरे लिए अच्छा है वह मुझे आप दीजिए, और वो मेरे कैसे अच्छा है समझने के लिए बुद्धि भी दीजिए, उसे स्वीकार करने के लिए मुझे शरण भी दीजिए, तो उस तरह से हम करते हैं तो हम भक्ति की प्रगति करेंगे।
प्रोत्साहित होकर उसके ऊपर जाके उसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब एडमायर करते हैं वो चीज को, तो जैसे कि अभी जो मोमेंट चल रहा है अपना, तो वहाँ पे महाप्रभु का इतना ग्रेस है कि ये मोमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है और लोग सेंटर्स में आते हैं और खुशी खुशी उसको ये करते हैं, मतलब अपना लेते हैं, लेकिन इन अदर दिस थिंग्स मोमेंट्स लाइक आर्ट ऑफ लिविंग एंड रजनीश ओशो वहाँ पे भी कंपैरिजन वाइज देयर आर सो मेनी सेंटर्स, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वहाँ पे लोगों को अट्रैक्शन होना और वो जो सक्सेस है वो लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है और क्यों करता है?
तो अलग अलग संस्थाओं में धार्मिक अध्यात्मिक संस्थाओं में लोग जाते हैं, इसके आकर्षित होते हैं. तो कृष्ण भगवान संग जैसे महाप्रभु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, तो वहाँ उसके कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं. तो वहाँ पे लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं? तो वास्तव में अधिकांश लोगों को धर्म क्या है और धर्म से क्या प्राप्त करना है यह पता नहीं. तो बहुत से लोग मानसिक और आध्यात्मिक इन दोनों को एक ही मान लेते हैं. तो लोग मंदिर में जाते हैं क्यों, और कोई संस्थान जाते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, कुछ आते हैं, मन की शांति चाहिए. ठीक है, मन की शांति अच्छी है, पर मन की शांति से ऊंची है मन की शुद्धि. मन का शुद्धिकरण करें और शुद्धिकरण करके प्रेम प्राप्त करें. तो अलग अलग प्रकार की विधियां है, प्रक्रिया है, थोड़ी बहुत मन की शांति मिल सकती है. तो क्या होता है, कई बार जब लोग जाते हैं अलग अलग संस्थाओं में, तो क्योंकि उनको शिक्षण नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या अपेक्षा है, क्या मिलना चाहिए मुझे पता ही नहीं. तो इसीलिए उनको अगर थोड़ी मन की शांति मिल गई, पता है अच्छा है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मन की शांति मिल गई, और शायद मिल भी रही होगी, ऐसे नहीं क्या मिलते नहीं मिलती होगी. पर यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर मेरी भगवान से आसक्ति जागृत नहीं हुई है, भौतिक चीज़ों से आसक्ति कम नहीं हुई है, तो मेरा मन शांत भी रहेगा, तो शांति से नहीं मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म मुक्ति चक्र चक्कर में संसार होगा. तो इससे कुछ वास्तव में मेरा चीर काल में कुछ कल्याण नहीं होने वाला है. तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि दूसरी संस्थाओं की निंदा करनी चाहिए, पर हमें लोगों को समझाना चाहिए कि धर्म के पास जाए तो उसका असली फल क्या है. हमें भगवान, हम शाश्वत जीव है और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए. अगर हम शिक्षण चीजें प्रदान करते हैं, तो मैं इसको मनाने के लिए कई संस्थाओं में है, और अधिकांश संस्थाएं जो है वो आपको बताएगी कि आपको मन शांत कैसे होगा. ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के तट पर बैठे हैं और नदी बड़ी शांत चल रही है, मधुर हवा आ रही है, दूसरी ओर पहाड़ है, पहाड़ के पीछे बांदर है, और आपका सारा शरीर शांत हो गया, आपका मन शांत हो गया. कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. तो वास्तव में मन की शांति अच्छी है, पर मन की शांति जीवन का उद्देश्य नहीं है. हमें आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त करके भगवान धाम जाना है, तो शिक्षण देंगे तो फिर और लोग भगवान के आकर्षित होंगे.
हरे कृष्ण. रोजी में आजकल हम देखते हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस इतना है कि जो चीज उसमें दिखाई जाती है वो सही, मतलब गलत भी रहेगी तो भी पीपल उसको सही तरह से एक्सेप्ट कर लेगा. पर अगर कोई डिवोटी रहेगा, वो अगर वो चीज़ बताने का ट्राई करेगा, तो उसको वो लोग उतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और जैसे कि मतलब भगवान के शब्द है, तो भगवान की हर चीज अट्रैक्टिव होती है, तो ऐसा क्यों कि हम मतलब अगर भगवान के शब्द अगर हम बता रहे हैं तो मतलब वो लोग क्यों एक्सेप्ट कर पाए?
तो भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान के शब्द लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? उसके विपरीत जो भौतिक जो कुछ टीवी पे दिखाते हैं तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं. तो क्या है, भगवान सर्वाकर्षक है, पर वो भगवान का सर्वाकर्षक आध्यात्मिक स्तर पर समझ सकते. भौतिक स्तर पर समझना है तो हमें भौतिक स्तर पर भी प्रभावशाली होना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी एक बार हांगकांग में गए, हांगकांग में सिंगापुर बैठे, वहाँ पे एक बड़े होटल में प्रभुपाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो फिर फाइव स्टार होटल में सवाल, तो वहाँ पे जो अखबार वाले आए थे वो कहने लगे स्वामी जी अभी आप तो सन्यासी हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइव स्टार होटल में क्यों रखा है? क्या रोचित है? प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के जब कर सकता हूँ, पेड़ के नीचे नहीं सकता, पर अगर पेड़ के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता तो क्या आप आते थे? तो यहाँ पे क्या है, भगवान का गुणगान भी हमें इस तरह से करना चाहिए कि भौतिक दृष्टि से भी वो आकर्षित.
ऐसी जगह पुना मंदिर जो हुआ था हमारा भाई पुना मंदिर को राष्ट्रपति आए थे भारत के वो उसको इनॉग्रेशन की तो पहले 100-150 लोग 1000 लोग मंदिर में आते थे रोज के दिन अभी तक कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं रोज दर्शन के लिए और वो लोग क्या कहते हैं उनकी विचारधारा क्या है अगर ब्रजड़ी के मंदिर देखने आए तो हमें भी देखने आ जाए तो यहाँ पे क्या है भगवान मंदिर में है इसलिए उनका दर्शन कर जाना ये भाव नहीं है तो लोग क्या देखते हैं भौतिक दृष्टि से भगवान भौतिक दृष्टि से आकर्षक क्या है तो इसलिए हमें जो कृष्ण भावना का प्रस्तुतिकरण है वो भौतिक दृष्टि से आकर्षक करना चाहिए तो इसीलिए जहाँ तक हो सके अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रश्नोत्तर बनाए हैं इसके आधार पर जो ओ माय गॉड का प्रत्युत्तर करने वाला कोई मूवी बना सके कोई ना तो हम प्रयास कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत लक्ष्मी लगती है और टैलेंट लगता है तो अगर होगा तो बहुत अच्छा है तो हमें भक्तों को और करना चाहिए कि और प्रभावशाली पद्धति से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए आध्यात्मिक सिद्धांत का और फिर लोग देखेंगे कि लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे जो सही में बुद्धिमान लोग हैं कैसा भी प्रस्तुतिकरण हो वो उसे आकर्षित हो जाएंगे देखेंगे यहाँ पे सब्सटेंस है यहाँ पे अच्छी बात है पर अधिकांश लोग वहां तो जाएंगे सिर्फ पहले वो प्रस्तुतिकरण देखते हैं राधारास बहरे का इतना प्रभुपाद जी सुंदर मंदिर बनाया है तो यहाँ पे इतना विशाल मंदिर है लोग देखने आ जाते हैं और फिर उनको आपसे भक्तों का संग मिलता है उनका कल्याण हो जाता है तो हमें भी क्या करना चाहिए प्रस्तुति करना और प्रभावशाली पद्धति करना चाहिए मेरा सवाल
एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है आजकल कोई भी कमा रहा है तो बस एक चीज है कि दोष भूत होता है कि नहीं होता है इस पे बहुत कुछ बहुत फिल्म बनती है और इसके बारे में मतलब सही में होता है कि नहीं इस पे गॉड पे गॉड रहेगा भूत नहीं आएगा बात नहीं आएगा ठीक है ऐसी फिल्म बनी है तो क्या दोष होता है ऐसा कुछ होता है क्या कि गॉड रहेगा उधर भूत नहीं रहेगा भूत होता है कि नहीं होता
तो क्या दो सवाल है क्या भूत अस्तित्व में होते हैं और अगर क्या भगवान होते हैं तो वहाँ पर भूत चले जाते हैं तो कैसे है कि सबसे पहले भूत मतलब क्या है इसको समझना चाहिए तो कैसे है कि हमारा जो अस्तित्व है अभी हम आत्मा ओके मेरे पास ये आप जो इंग्लिश को समझ में आता है वो ठीक है नहीं आता तो फर्क नहीं पड़ता है तो मैं समझा दूंगा तो भूत क्या है मैं सबसे पहले समझाता हूँ क्या है कि यहाँ पर तीन चक्र देख रहे हैं अंदर का जो चक्र है वो आत्मा है और फिर उसके बाहर जो है सूक्ष्म शरीर है और सबसे बाहर जो है वो स्थूल शरीर है तो हम सब जो है ये आत्मा है फिर हमारा मन और बुद्धि अहंकार वो स्थूल सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है वो हम यह शरीर दान देते हैं और फिर दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं मतलब यहाँ पे स्थूल शरीर नहीं चले जाएगा और आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे शरीर चले जाएगा पर कभी कभी क्या होता है अगर व्यक्ति मान लीजिए आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करते जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमें हमारे पूर्ण कर्मों के अनुसार इस शरीर में कुछ समय के लिए मान लीजिए वे व्यक्ति है 60 साल जीना होता है पर वो 20 साल की उम्र में आत्महत्या करते हैं तो अभी अगले 40 साल के लिए उस व्यक्ति को नया शरीर नहीं मिलने वाला है तो फिर क्या होता है वो व्यक्ति केवल बाहर के शरीर के बिना सिर्फ आत्मा और सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है तो अभी ये जो मृत्यु के समय क्या हो गया वो जो स्थूल शरीर में चला गया और आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर के बाहर आ गया और अगर उसको दूसरा शरीर नहीं मिला तो जो आत्मा और सिर्फ सूक्ष्म शरीर है उसको भूत कहते हैं भूत मतलब क्या आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर जो स्थूल शरीर के बिना है तो अभी क्या करता है ये भूत नाम सुनकर लोग डर जाते हैं पर वास्तव में वो खुद लोगों को दुख देते हैं पर खुद भी बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनको शरीर नहीं है, और अगर हमें कुछ करना है, कुछ इच्छा है पूरी करनी है, तो पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को स्वीट खाने की इच्छा, पर अगर उसको जिह्वा ही नहीं है तो स्वीट खाया कैसे? तो हमें जो ये भूतों की परिस्थिति है कि वो क्या करते हैं, उनको भोग करने की इच्छा है पर यंत्रणा ही नहीं है भोग करने की। तो जिह्वा नहीं है खाने के लिए, अगर मैथुन का भोग करना है तो शरीर नहीं है भोग करने के लिए, तो फिर उसके कारण वो पीड़ित रहते हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, किसी और कमजोर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो कह होते हैं इसके शरीर में भूत आ गया है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये, तो एक साधारण व्यक्ति है, उसका शरीर है, उसका स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, एक आत्मा है, पर क्या होता है ये भूत उसके शरीर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो मूल व्यक्ति है वो नीचे चला गया है और जो भूत है उसके अंदर आ गया है। जब भूत उसके अंदर में आ जाता है तो क्या होता है, तो भूत उसके शरीर को नियंत्रण करता है और कभी कभी वो व्यक्ति अलग ही बातें करने लगता है। जैसे क्या है, उसका आवाज बदल जाएगा, उसकी इच्छा बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। और जो जो प्रभुपाद जी ने बड़े शिष्य विज्ञान में डॉक्टर माइकल क्रीमो कृतकर्मा प्रभु, उन्होंने किताब लिखा है ह्यूमन डिवोल्यूशन, और उसमें कई ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हुए पसंद बताए पोजिशन, इंग्लिश में इसको पोजिशन कहते हैं, मतलब कोई भूत अलग से व्यक्ति में आ जाता है तो उसको पोजिशन कहते हैं। तो उन्हें देखा है कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति का स्वभाव पूरा बदल जाता है। तो क्यों हो रहा है वो, क्योंकि कोई और जो आत्मा और सूक्ष्म मतलब भूत उसके अंदर आ गया है। तो भूत का अस्तित्व तो है, भूत कभी कभी व्यक्ति के शरीर में आ भी सकते हैं। पर कौन से लोग शरीर में आते हैं, जो लोग कमजोर है, ये कमजोर मतलब ये शारीरिक स्तर पर जोर की बात नहीं हो रही है, कमजोर मतलब जो तमोगुण के प्रभाव मानसिक स्तर से कमजोर है, जो लोग नशापान करते हैं, जो लोग मानसिक स्तर से कमजोर है उनको भूत पकड़ लेते हैं। पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, हम अंतरंग रूप से सशक्त रहते हैं, तो इसलिए वहां पे भूत भूत वगैरह नहीं आते। तो इसीलिए ये सत्य है कि अगर हम अगर कहीं ऐसे बहुत प्रसन्न भी हुए हैं कि अगर कहीं कई जगह पे भूत से अमेरिका में प्रभुपाद जी मंदिर खोले तो प्रभुपाद जी या भक्तों को ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते। तो कई बार ऐसे जगह पे मंदिर खोल दिए जहाँ पे ऐसा लोगों को ऐसा खबर था कि यहाँ पर कोई भूत बन गए, तो कोई वहाँ पर जाना भी नहीं जाता था। तो वो जो जगह थी बहुत सस्ते में मिल जाती थी, तो फिर भक्त बहुत ही बोलते हम यहाँ पे मंदिर बना देंगे तो कोई आएगा ही नहीं, यहाँ पर आप चिंता मत करो, आप वहाँ पे जाओ वहाँ पे कीर्तन करो। और फिर वो कीर्तन करते थे और फिर क्या होता, भूत चले जाते। ये वास्तव में कई प्रसंग हुए हैं ऐसे। तो इसीलिए हमें लंदन में बद्रीनाथ मैनर में ऐसे हुआ है, कई जगह पे हुआ है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि भूतों का अस्तित्व है, पर अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें भूतों से भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। भगवान का जहाँ पे होते हैं वहां पे अंतरंग शक्ति होती है और फिर उस व्यक्ति को भूत पकड़ नहीं सकते। आखिरी सवाल से
मतलब ब्रह्मचर्य और सन्यासी किसे कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है और मुझे ये जानकारी चाहिए। और परिवार के लोग भी कृष्ण से जुड़ते हैं, फैमिली रहते हुए भी कृष्ण से जुड़ते हुए हैं, इसमें उत्तम मध्यम निम्न कौन सा? सबसे पहले तो फर्क मुझे ये जानना चाहिए कि सन्यासी किसे कहते हैं और ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं।
ब्रह्मचर्य कौन है और फिर
ब्रह्मचर्य भक्ति करते
हैं, तो दोनों में कुछ उचित श्रेष्ठ कौन है? तो वास्तव में वो जो ब्रह्मचर्य शब्द है ब्रह्मचरति की ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी है, मतलब जो आध्यात्मिक सत्य के लिए जी रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जी रहे हैं वो ब्रह्मचारी है। तो यह ब्रह्मचारी का एक पहलू है। तो इस परिभाषा से हर एक भक्त, हर एक पुरुष और हर एक सब ब्रह्मचारी हो सकते हैं। तो पर ये जो पारंपरिक रूप से ब्रह्मचारी के शब्द का अर्थ है वह जो
अविवाहित रहकर सर्वस्व अपना भगवान की सेवा करने लगाते हैं, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य सन्यासी में फर्क यह है कि सब लोग जो होते हैं चार आश्रम से जाते हैं, जाने चाहिए। पहला जो आश्रम अगर अविवाहित रहते हैं तो वो ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में कुछ गृहस्थ बनते हैं, फिर कुछ वानप्रस्थ लेते हैं, और फिर वो संन्यास लेते हैं। संन्यास जो ब्रह्मचर्य बनकर ब्रह्मचर्य के और प्रगतिशील उस तरह संन्यास करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति व्रत लेता है कि मैं अभी इस भौतिक जगत को पुनः नहीं देखूंगा, मैं भगवान नहीं करूंगा और जीवन भर भगवान की सेवा में रहूंगा। तो ब्रह्मचर्य संन्यास एक ही भाव है, पर जो तीव्रता है प्रैक्टिस की, अभ्यास की, वो संन्यासी में और होती है। और हाँ, गृहस्थ के रूप में भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और कौन ऊंचा है कौन नीचा है, वास्तव में यह व्यक्ति के अंतरंग चेतना पे है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक आश्रम ज्वाइन कर लेने से कोई ऊंचा बन जाता है कोई नीचा हो जाता है। हमारे भक्ति में श्रद्धा, भगवान श्रद्धा कितनी है, भगवान से आकर्षण कितना है, उस पर निर्भर है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या संन्यास आश्रम में भगवान से, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए सुविधा अधिक होती है, समय अधिक होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने का समय अधिक होता है। तो इसीलिए अधिकांश से ब्रह्मचारी संन्यास जो होते हैं वो आध्यात्मिक शिक्षक बनते हैं और वो आध्यात्म भगवान का ज्ञान बाकी सबको देते हैं। तो सुविधा अधिक है एक तरह से इन वैराग्य के आश्रम में, पर अंत में जो प्रगति है वो किसी आश्रम पर निर्भर नहीं है, वह वास्तव में व्यक्ति की चेतना पे, व्यक्ति की श्रद्धा पे, व्यक्ति के भगवान के आकर्षित होते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो अनुकूल है वो स्वीकार करना है। हमें ऐसे नहीं कि हमें ब्रह्मचारी बनना है या हमें गृहस्थ बनना है, हम सबको भक्त बनना है। और कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचारी बनकर भक्ति करना अनुकूल होता है, कुछ लोगों के लिए गृहस्थ बनकर भक्ति करना अनुकूल होता है। तो हर एक व्यक्ति को खुद विचार करके, दूसरे भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर फैसला करना है, और फिर हमारे श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार हमारे प्रगति होगी। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद।
टिल व्हाट टाइम कैन वी गो ऑन?
ओके, लास्ट क्वेश्चन बोलो।
और जो ओम आई जी वर्ड आपने दिखाया, इस पिक्चर में बोला गया कि मंदिर में दान करने से अच्छा है मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उन पर दान करना अच्छा रहता है। तो मैंने मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उन पर दान किया, तो वो जाके बाहर सिगरेट पी लिया, तो मेरा दान का क्या मतलब रहा?
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मंदिर में दान देने के पहले भिखारियों को दान देना चाहिए। तो ये बड़े विस्मय की बात है कि जब भी भगवान पे कुछ पैसा खर्च करते हैं तो लोगों को भिखारियों की आदत है। अभी इस दुनिया में कितने सारे लोग, कितने सारे फालतू चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं, तभी भिखारियों की याद क्यों नहीं आती? अभी यूनेस्को जो है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उन्होंने संशोधन किया है कि अमेरिका और यूरोप, ये दो विभाग है जितना पैसा परफ्यूम पे खर्च करते हैं, परफ्यूम मतलब शरीर को सुगंधित करने के लिए, जो इतना पैसा परफ्यूम पे खर्च करते हैं उतने पैसे से दुनिया के सारे भूखे लोगों को खाना मिल सकता है। तो मतलब क्या है कि वहां पर कितना खर्चा होता है उस तरह से मनोरंजन के लिए, अभी मूवीज बनाने के लिए, अभी आईपीएल चालू होने वाला है उस पर कितना खर्चा होता है, तभी अभी आईपीएल का इनॉग्रेशन के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, तभी भिखारियों की याद क्यों नहीं आती? तो ऐसे क्यों है कि जब भगवान के लिए कुछ दान दिया जाता है तभी भिखारी की आदत है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भिखारियों को भूखा रखना चाहिए, ये बात नहीं है, पर जब इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो ऐसे क्या लगता है कि भगवान को दान देने के कारण लोग भूखे रह रहे हैं? ऐसे नहीं, कितने जगह पे लोग ऐशो आराम कर रहे हैं उसके कारण भिखारी भूखे रह रहे हैं। तो अगर लोग भगवत चेतना में रहेंगे, समाज धार्मिक रहेगा, तो फिर उससे क्या होगा, उससे लोगों में दानशीलता आएगी, सरकार में निधि आएगी, और फिर उससे लोग भिखारी भूखे नहीं रहे। तो आपने इस सत्य बताया है कि भिखारी दुरुपयोग करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, और फिर उससे हमारे दान में कुछ फायदा नहीं होगा। तो वास्तव में जरूर जो भूखे हैं उनको मदद करनी चाहिए, पर मदद कैसे करनी चाहिए? ऐसे नहीं है कि भगवान की पूजा को बंद कर देने से भूखे लोगों का भूखापन बंद हो जाए। वास्तव में अगर जितनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी उससे लोगों का और कल्याण होगा। कैसे? सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर जरूर कल्याण होगा, पर भौतिक स्तर पर अगर हमें देखना है तो अभी इन लोगों में लोग भूखे क्यों रहते हैं, विकारी भूखे क्यों रहते हैं? कई कारण है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। और अन्न उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो जमीन है वो जमीन अन्न उत्पन्न करने के जगह पे गन्ने उत्पन्न कर रही है, और गन्ने क्यों उत्पन्न कर रही है? लोगों को शराब बनाने के लिए। तो ऐसे लाखों लाखों एकड़ जगह है जहाँ पे अन्न बनाया जा सकता है, पर वहां पे गन्ने बनाया जाता है शराब पीने के लिए। तो जितनी भगवान की भक्ति की वृद्धि होगी उतने लोग बुरे आदत से मुक्त हो जाएंगे। अगर लोग शराब पीना छोड़ देंगे तो वो सारी जमीन जो गन्ने बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है वो अन्न बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर सारे भूखे गन्ने भी जाएंगे। उसी तरह से जो लोग मांसाहारी है, वास्तव में क्या होता है जब मांस खाते हैं तो सबसे पहले हमें वो जानवर है, जानवर को खिलाने के लिए पहले घास या अनाज जो कुछ बनाना पड़ता है, और फिर वो जानवर को इतना अनाज खिलाने के बाद वो इतना सा मांस बनता है। क्या होता है, अधिकांश जो खाता है वो पेशेंट के पास निकल जाता है। तो फिर वो वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि जितनी जमीन एक मांसाहारी व्यक्ति को खाना खिलाने की लगती है उतने जमीन में 5 से 15 शाकाहारी लोग अन्न के खा सकते। क्यों? क्या होता है वो उतनी जमीन, आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इतना सारा अगर हम अनाज बनाएंगे वो एक गाय खाएगी या एक जानवर खाएगा, सुअर खाएगा, और फिर उससे इतना सा मांस बनेगा और उतना मांस लोग खाएंगे। तो ये वैज्ञानिकों ने ही बताया है, मेरी किताब में मैंने इसका स्टेटिस्टिक्स भी दिया है, रेफरेंसेस भी दिया है। तो कि अगर अभी आज के अमेरिका में जो 90% जगह जो है वह जो खेती है, खेती मानवों के लिए अन्न नहीं बना रहे, जानवरों के लिए अन्न बना रहे, और ये बहुत दुरुपयोग है। और उससे क्या होता है, मानवों के लिए अन्न कम बन रहा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था, उन्होंने कहा है कि अगर सारे विश्व के लोग शाकाहारी बन जाएंगे तो दुनिया में अनाज की कमी है वो समस्या पूरी तरह चली जाएगी, और अभी इतनी लोक संख्या है उससे 3 गुना अधिक लोगों के लिए पृथ्वी अन्न उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे एक समस्या जो भिखारियों की है वो क्यों है समझना चाहिए। अगर जितने लोग भक्ति में लग जाएंगे उतने मांसाहार छोड़ देंगे, और अगर लोगों को भक्ति में लगाना है तो फिर भगवान, जैसे मैं पहले बता रहा था, भगवान के लिए और सुंदर और आलिशान जो है उनकी पूजा होनी चाहिए, तो और लोग भगवान के पास आएंगे और लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इसलिए यह बहुत भ्रांत धारणा है कि हमें भगवान भुखारियों को भूख मिटाने के लिए हमें भगवान की भक्ति कम करनी चाहिए। नहीं, भक्ति स्तर में जवाब दिया इसका, सबसे पहले कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। ऐसे नहीं है कि भगवान के हम कितने जगह पे ऐसा खर्च करते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो परफ्यूम पे खर्चा करता हूँ, कि मैं सोचता हूँ मन हूँ तो मैं एंटरटेनमेंट मनोरंजन पे बड़ा खर्च करता हूँ, तो ये सारा जो पैसा है वो खर्च है, और फिर वहाँ हम समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट जो मैंने बोला, सबसे पहला कि अगर व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, समाज धार्मिक बन जाएगा तो लोगों से दानशीलता आएगी, लोगों में स्वार्थ कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, और फिर उससे भिखारी कम रहेगी। दूसरा बताया, अगर भिखारियों की चिंता है तो सिर्फ भगवान पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे, कितने सारे और चीज़ों पर खर्च हो रहा है जो व्यर्थ है उसके बारे में बात करें। तीसरा बताया कि भगवान में जो हम भक्ति के लिए खर्च करते हैं उससे क्या होता है, उससे लोगों में भक्ति प्रवृत्ति करने में सहायता होती है, और जब भक्ति प्रवृत्ति करने में सहायता होती है तो शाखा तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे, मांस खाना छोड़ देंगे, और उससे जो अन्न उत्पत्ति बढ़ जाए। तो यह जो भिखारियों और अन्न कमी का समस्या है यह उसका मूल पे है। तो धर्म में, तो दुनिया में भोजन की कमी नहीं है, दुनिया में भजन की कमी है।
इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये जो इंटरव्यू आपने दिखाया अभी ये मैंने भी देखा है और ये पूरे मूवी के बाद मुझे एक मैसेज मिला है कि ये पूरा मूवी जो है मानव सेवा के ऊपर बताया गया है नॉट मदर सेवा और ये पूरा इंटरव्यू उसी ऊपर बताया गया है इसमें ज़्यादातर फोकस गया है मानव सेवा करने के लिए। मुझे तो इसका थोड़ा बहुत आंसर पता भी है लेकिन यहाँ बहुत से लोग नए लोग हैं जिनका यही विचारधारा है कि मानव सेवा और मानव सेवा लोग बराबर डिफेंस नहीं कर पाते तो मैं आपको क्या पूछा
मानव सेवा मदर सेवा मेरे क्या महत्वपूर्ण है। वास्तव में मानव को मानव से जोड़ना ये सर्वोच्च मानव सेवा है। क्या है मानव को मानव से जोड़ना ये सर्वोच्च मानव सेवा है। मानव सेवा मतलब लोगों को खाना खिलाना या दवाई देना ये अच्छी बात है पर यह सर्वोत्कृष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी का सवाल पूछा था प्रभुपाद जी ने बताया कि मान लीजिए इसमें पहले बताया कोई बड़े अमीर व्यक्ति का लड़का है वो घूम गया तो फिर उसको कोई आके दवाई देता है उसको कपड़े देता है गंदा देता है अच्छी बात है पर अगर उस व्यक्ति को कोई अपने पिता के घर में ले जाता है तो उसकी सारी समस्या हमेशा ही अलग होती है। तो उसी तरह से जो मानव सेवा है अगर हम सिर्फ चार्ज करते करते हैं तो सिर्फ अस्थायी उपयोग होता है पर जब अगर हम लोगों को भगवान से जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है उससे लोगों का पूर्णतः कल्याण हो जाता है हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है और ऐसे नहीं कि अगले जन्म में कल्याण होता है तो हम मानव सेवा के खिलाफ नहीं है पर ऐसे नहीं कि मानव सेवा ही पर्याप्त है माधव सेवा महत्वपूर्ण है ऐसे नहीं कि माधव सेवा करना तो मानव सेवा छोड़ देना है। माधव सेवा करने से भी हम सर्वोच्च मानव सेवा करते लोगों का कल्याण न केवल आध्यात्मिक स्तर पर होता है पर भौतिक स्तर पर भी होता है। मुझे बता रहा कितने सारे लोग हैं जो बुरी आदत से छूट जाते हैं भक्ति करने से तो उससे उनका कल्याण होता है। कितने सारे लोग हैं जो मानसिक स्तर पर चिंतित रहते हैं पीड़ित रहते हैं वह उससे छूट जाते हैं भक्ति करने से वह भी कल्याण है। इस दुनिया में सब जानते हैं क्रोध जो है यह बहुत खतरनाक चीज़ है। क्रोध में आते हैं ऐसा बोलते हैं ऐसा करते हैं जिससे कि वो आम बातें पछताते हैं लोग दुख देते हैं पर दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो व्यक्ति को क्रोध से मुक्त कर सकती है। क्रोधित होने से दवाई को शांत हो जाती है ऐसा नहीं है। एक ही जगह कोई पागल खाने पर पत्ती घोल जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर उसको सोने की दवाई देते हैं फिर बाद में दिखता है तो पूरा क्रोध वापस होता है। तो पर जो भगवान की भक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्रोध से मुक्त करता है। तो क्रोध कम करना क्या यह कल्याण नहीं है यह भी कल्याण है। अभी जो समाज में तीन प्रधान समस्या है क्या एक है भ्रष्टाचार है एक है हिंसा है अलग अलग प्रकार की और दूसरा है कि बलात्कार और इस तरह से लैंगिक स्तर पर हिंसा जो है तो अभी ये सब क्यों हो रहे हैं ये काम लोभ और क्रोध के कारण हो रहे हैं। जो मैथुन लाल हिंसा उसके समय में जैसा बलात्कार हो रहा था वो लोग काम के कारण होता है। जो लोग युद्ध करते हैं मारते हैं किसी को सब क्रोध के कारण होता है और जो भ्रष्टाचार लोभ के कारण होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो उससे काम क्रोध लोभ कम होता है स्वाभाविक रूप से। अभी जो लोकपाल के आनंदन हो रहा है वो अच्छा है पर लोकपाल से क्या कर सकते हैं वो जो लोभी लोग हैं उनको सजा दे सकता है पर लोकपाल आंदोलन से वो लोभी लोग का लोभ उनको मुक्त नहीं कर सकते। अगर लोभी लोग को लोभ से मुक्त करना है तो उसको लोकपाल नहीं भोपाल चाहिए। भगवान की भक्ति में मुझे आनंद मिल जाएगा तो फिर और चाहिए लोग जो है इसे छूट जाएगा। तो इसलिए हम जो भक्ति करने से जो कल्याण होता है वह सर्वांग कल्याण है आध्यात्मिक कल्याण है मानसिक कल्याण है और शारीरिक कल्याण भी है। इसलिए भक्तों का भक्ति का प्रचार करना भक्ति का अनुशन करना यह सर्वोच्च मानव सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभुपाद जी
सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक।